الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا الليل لباسا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو اس کلاس کے اندر جو خود کی صبح ہوتی ہے، اس میں ہم نیند کا نظام یعنی سلیپ مینجمنٹ کے موضوع کے اوپر ہمارے حضرت یوسف الوقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کو پڑھتے ہیں اور اپنی تشریحات وغیرہ اس کے اندر ساتھ بیان کرتے رہتے ہیں. اچھا، تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ تشریحات بھی چلتی رہتی ہیں. تو یہ سلسلہ دروس امور خانہ داری میں حسن انتظام کا تیسرا درس ہے جو کہ ہم اس والی کلاس کے اندر پڑھ رہے ہیں، ہاؤس ہولڈ مینجمنٹ اور ریلیشن شپ مینجمنٹ کے بعد. سلیپ مینجمنٹ، جیسے کہ پہلے تمہیدی طور پر بہت ساری باتیں ہوئی ہیں اس کے اوپر کہ اپنی سلیپ کو مینیج کرنا، یہ آج کے دور کے اندر ایک بہت بہت زیادہ مشکل کام لگتا ہے. انفرادی طور پر تو شاید اتنا مشکل نہ ہو کہ اگر کوئی شخص چاہے انفرادی طور پر کہ بس میں جو ہوں وہ اپنے حساب سے سو جایا کروں اور اپنے حساب سے اٹھ جایا کروں، تو انفرادی طور پر وہ یہ کام کر بھی سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اس کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہٹ کر کے چلنا ہوگا، الگ بالکل جیسے گوئنگ اگینسٹ دا فلو والا معاملہ اس کو کرنا پڑے گا کہ پورے گھر سے، گھر کے دوسرے افراد سے بالکل الگ ہو کر کے بس اس کو سونا پڑے گا. اب وہ سو جائے اور پیچھے جو ہے نا وہ گھر کا نظام جیسا بھی چلتا رہے وہ اللہ کے حوالے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب وہ خود سو جائے گا یا سو جائے گی تو پھر پیچھے کیا ہو رہا ہے اس کو نہیں پتا چلے گا، ہے نا؟ نیند کے وقت پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ صلاحیت نہیں دی ہے انسانوں کو کہ انسانوں کو نیند کے دوران بھی پتا چلتا رہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے کچھ لوگ کر لیتے ہیں کہ بھائی خود سو جائیں، جلدی سو جائیں، جلدی اٹھ جائیں اور اپنا اپنا کام کریں بس، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ ایٹیٹیوڈ جو ہوتا ہے پھر یہ بیک فائر کر جاتا ہے اور اس کے جو ہے نا وہ بہت زیادہ نقصانات ہو جاتے ہیں، کیونکہ بہرحال آپ جو بھی ہیں لیکن ہیں تو سوشل اینیمل، ٹھیک ہے؟ آپ کو سوسائٹی کے ساتھ ہی چلنا ہے، اور کم از کم جو آپ کا گھر ہے تو وہ گھر تو آپ کی سب سے پہلی سوسائٹی ہے نا، سب سے پہلا جو آپ کا ماحول ہے، سب سے پہلے جو آپ کا معاشرہ ہے وہ آپ کا اپنا گھر ہے. تو اگر گھر جو ہے وہ بالکل دوسری سمت میں جا رہا ہے اور آپ اکیلے ہی جو ہے وہ دوسری سمت میں جا رہے ہیں تو اس کا نقصان جو ہے وہ آپ کے گھر کے اوپر ہوگا. تو اس کا پھر یعنی ہر کوئی اس کے لیے تیار نہیں ہوتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے کہ باقی، جس کو ہم اردو زبان میں محاورتن کہتے ہیں کہ باقی سارے جائیں جہنم میں، ٹھیک ہے نا؟ میں تو اپنی الگ ایک ڈیڑھ اینٹ کی جدی مسجد بنا کر کے میں تو اپنے میں خوش ہوں، باقی سارے جائیں جہنم میں، ٹھیک ہے؟ تو ایسا تو نہیں کرنا چاہیے، نہیں کر سکتے ہیں اس طریقے سے نا. تو خود جلدی سو جائیں، باقی لوگوں کو رہنے دیں، تو یہ ایٹیٹیوڈ نہیں چلتا. یہ اگرچہ کہ یہ آسان ہے، کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ پورے گھر کو لے کے چلنا چاہتے ہیں نا کہ بھائی سب کا فائدہ ہو، سب نقصان سے بچ جائیں، تو یہ چیز انتہائی مشکل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر ظاہر ہے جب اس کو آپ تھوڑا سا اور وسیع کریں، گھر سے بھی مزید اس کو بڑھا کر کے چند اور لوگوں کو بھی کوشش کریں کہ بھئی وہ بھی جلدی سو جائے کریں تاکہ ان کا بھی جو ہے وہ دنیاوی اور اخروی نقصان ختم ہو جائے یا کم از کم کم ہو جائے، تو یہ چیز اور بھی زیادہ بہت زیادہ مشکل، حتیٰ کہ یہ آجز تو آپ لوگوں کو بتا چکا ہے کہ یہ اتنی مشکل ہے، اتنی مشکل ہے کہ جتنا اس دور کے اندر عورت اور مرد کا جو مقام शैतान ने गंडमट कर दिया है आपस में, तो उस मकाम के खिलाफ जाना जितना मुश्किल काम है ना, ये उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है। और जो लॉर्ड मैकॉले बरतानिया का और अमेरिका का बनाया हुआ तालीमी निजाम है जो पूरी दुनिया में राइज है, ठीक है, तो उस तालीमी निजाम के खिलाफ जाने से भी ज्यादा मुश्किल काम ये है, ठीक है। तो इसकी वजह जाहिरी तौर पर, अगर हम आपसे पूछें कि जाहिरी तौर पर इसकी वजह क्या है, और बातनी तौर पर फिर वो एक अलग सवाल है कि बातनी तौर पर इसकी क्या वजह है और जाहिरी तौर पर इसकी क्या वजह है कि इतना मुश्किल है ये काम, नींद के इस निजाम को दुरुस्त करना इतना मुश्किल काम है क्यों? इसकी एक जाहिरी वजह बताएं और इसकी एक बातनी वजह बताएं, यानी रूहानी वजह और जाहिरी वजह, ठीक जी, क्या वजह बनती है इसकी? उन्होंने साइड में एक सवाल कर दिया है, वैसे जवाब तो अभी किसी ने दिया होगा, लेकिन सवाल इन्होंने ये किया है कि फजर के बाद क्या किया जाए कि नींद दोबारा ना आए, जबकि 10:30 तक सो जाते हैं, कभी 11 भी बज जाता है। फजर कितने बजे होती है आपके यहाँ? आजकल समर है ना, आजकल गर्मियों का मौसम है ना, तो फजर जो है वो आपके यहाँ भी 4 बजे है ना, या 4:15 बजे फजर हो रही होगी। तो 10 साढ़े 10 बजे सोने से आपको 4:15 बजे शुरू हो जाती है ना। अच्छा, आपके यहाँ 4:15 बजे, चलिए 15 मिनट आगे हो जाती है, तो 10 साढ़े 10 बजे से नहीं काम चलता ये जो है ना। फिर इशा की नमाज फौरन पढ़ के, इशा का वक्त कितने बजे होता है? अगर 8:15 बजे होता है तो इशा के नमाज पढ़ के आपको 9:15 बजे सोना होगा, तब आप इस काबिल होंगी कि फजर के बाद आप नहीं सो सकें, ठीक है। और अगर आप 10:30 बजे 11 बजे सो रही हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि फजर के बाद आप ना सोए बगैर रह सकें, सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है जी। तो इसकी जो एक जाहिरी वजह है ना, वो है ये लाइट बल्ब का मौजूद होना, ठीक है, जो कि सोशल मीडिया से बहुत पहले दुनिया में इजाद हो चुका था। सोशल मीडिया तो अभी की बात है, 2010 की बात है जब सोशल मीडिया आया, राइट। तो इसकी असल वजह जो है ना, वो ये आर्टिफिशियल लाइटिंग है। सोशल मीडिया भी तो आपके फोन पे चलता है ना, ठीक है, तो फोन के अंदर भी तो एक आर्टिफिशियल लाइटिंग होती है ना, जो उसकी रेज निकल रही होती है, जो लाइट होती है, तो वो भी तो आर्टिफिशियल लाइटिंग है ना। तो वो आर्टिफिशियल लाइटिंग कब इजाद हुई? वो तो बहुत पहले इजाद हुई थी ना। तो ये इसकी जाहिरी वजह है कि चूंकि अब रात को इस लाइट के जरिए से दिन बना दिया गया है, तो अब जो है वो, क्योंकि अब ये बजाहिर दिन हो गया, असल हकीकतन ये दिन नहीं है, लेकिन ये एक धोखे का दिन है, ठीक है, ये एक डिसेप्टिव डे है, हकीकत में ये डे नहीं है, ठीक है ना। हकीकत में तो सूरज गुरूब हो गया, रात शुरू हो गई। तो ये इसकी वाहिद जाहिरी वजह है, बातनी वजह इसकी क्या है? 7:35 तक तो आपके यहाँ ईशा हो जाती है, तो आपको फिर 8:30 बजे सोना होगा, 10:30 11 बजे नहीं, 8:30 बजे सोना होगा, वरना फिर आप फजर के बाद इशराक पढ़ें, इशराक के बाद अब आप थोड़ी नींद कर लें, ठीक है, क्योंकि इसके बगैर कोई चारा है नहीं, वरना फिर अमराज के लिए तैयार रहें। इस आजिस के सगे भाई जो हैं वो डॉक्टर हैं, ठीक है, थीके? तो अभी 3 दिन पहले की बात है कि हमने उनसे ऐसे ही बस दोबारा रिकन्फर्म करने के लिए हमने उनसे पूछा कि हमने सुना है कि शुगर का जो मर्ज होता है ना, वो नींद की कमी की वजह से होता है, चीनी खाने की वजह से नहीं होता, नींद की कमी की वजह से शुगर का मर्ज होता है। तो हम अपने भाई साहब से पूछा, डॉक्टर साहब से, कि इसकी साइंसी हकीकत कितनी ज्यादा है, यानी साइंस इस बात को कितना सपोर्ट करती है कि शुगर का मर्ज जो है वो नींद की कमी की वजह से होता है। तो भाई साहब ने जवाब दिया, शुगर का मर्ज नहीं, हर मर्ज का ताल्लुक नींद के साथ है, हर मर्ज का ताल्लुक नींद के साथ है, ठीक ठीक है। और ये मैं किसी पीर साहब की बात नहीं कर रहा कि उन्होंने जवाब दिया, मैं किसी मौलवी साहब की बात नहीं कर रहा कि उन्होंने जवाब दिया, ये बाकायदा मेडिकल डॉक्टर जो कि एक बहुत ही बड़े अस्पताल के अंदर और रिसर्च के अंदर भी अच्छा खासा उनका कंट्रीब्यूशन है, रिसर्च रिसर्चर भी हैं, सिर्फ क्लिनिक करने वाले डॉक्टर नहीं है बल्कि पढ़ाते भी हैं, रिसर्च भी करते हैं, ठीक है। तो उनका जवाब क्या था, हर मर्ज का ताल्लुक नींद की कमी के साथ, ठीक है। तो अब ये वो इंडिया के किसी डॉक्टर को कोई बहुत बड़ा अवार्ड मिला अभी रिसेंटली, वो मौलाना साहब ने बताया था, वो आपके पलमनीर वाले मौलाना साहब ने, कि उन डॉक्टर साहब ने जब उनको अमेरिका में बहुत बड़ा अवार्ड मिला ना, तो उसके बाद फिर उन्होंने ये बयान दिया कि अगर आप लोग अपनी नींद को दुरुस्त कर लेना तो आप लोगों को हमारी दवाओं की जरूरत नहीं रहेगी, अगर आप लोग अपनी नींद को दुरुस्त कर लें तो आपको हमारी दवाओं की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है ना। अब और क्या आपको चाहिए ना, अब अभी ये आला है रब्बी कुमार तो कद जबान, अल्लाह ताला ये कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे, है ना। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं ना, मेरे कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे, तो भाई अब डॉक्टरों की किस किस बात को जुटलाओगे, जो अल्लाह के निजाम के मुताबिक जो अगर वो बात कर रहे हैं तो उसको क्यों नहीं मानते, उनकी दूसरी बातों को तो बड़ा मान लेते हो, है ना। आज अगर वो शोर मचाना शुरू कर दें कोरोना आ गया कोरोना आ गया, तो पूरी दुनिया बंद हो जाएगी, राइट। लेकिन जो बात वो अल्लाह के निजाम के मुवाफिकत में कर रहे हैं उसको नहीं मान के दे रहे, क्यों नहीं मान के दे रहे, यही हमारे सवाल का जवाब। हमारा दूसरा सवाल क्या था कि ये जो पूरा दीन का निजाम दरहम बरहम हुआ हुआ है उसका दूसरा रीजन क्या है, बातनी रीजन उसकी क्या है, वो आप में से किसी ने जवाब नहीं दिया उसका, क्या रीजन है उसकी, बातनी रीजन उसकी क्या है, रूहानी रीजन। एक तो जाहिरी रीजन हो गई ना, मादी रीजन हो गई उसकी, मादी रीजन है आर्टिफिशियल लाइट नहीं, ठीक है। बातनी रीजन क्या हो गई उसकी, कितना मुश्किल है ना, सबसे मुश्किल सवाल यही है। सबसे मुश्किल सवाल ऐसा लग रहा है कि सबको डर लग रहा है जवाब देते हुए, एक जवाब तो आया है लेकिन वो इतना सही जवाब है नहीं, ठीक है। एक जवाब आया है नफ्स, ठीक है, लेकिन ये इतना अप्रोप्रिएट जवाब नहीं है इसका, ठीक है। चले हम भी आगे नहीं बढ़ेंगे, बैठ गए आगे नहीं बढ़ना हमें जब तक आप जवाब नहीं देंगे इसका, उल्टे सीधे जवाब नहीं। स्क्रोलिंग क्या हो गया भाई, बातनी रीलिंग जो है, बातनी रीजन, बातनी का मतलब पता है, स्क्रोलिंग कोई कह रहा है, सुपुर्दगी किसी ने कहा, किसी ने कहा स्क्रोलिंग कहा, क्या हो गया भाई। नफ्स अल्लाह के निजाम को फॉलो नहीं करना चाहता, हमें अपनी मर्जी चलानी होती है। आप लोगों का जो दोस्त है उसका नाम यानी ये होता ना, दोस्त का नाम लेते हुए डर लगता है, वो नाराज हो जाएगा, ये मसला है क्या, मैंने हद होती है हर चीज की, एक का नाम ही नहीं ले रहे सबके सब डर के मारे, पता नहीं क्या हो गया, चले शुक्र है किसी ने नाम लिया शैतान, ठीक है। शैतान का क्यों नहीं नाम आता जुबान के ऊपर, क्योंकि शैतान चाहता नहीं है कि उसका नाम आए जुबान के ऊपर, इस वजह से शैतान का नाम नहीं लेकर के आते हम जुबान के ऊपर, ठीक है। तो इसकी जो बातनी रूहानी रीजन है ना, वो शैतान है, सही है। और शैतान का
अच्छा
भी जो सबसे बड़ा आलायकार है दुनिया के अंदर, सबसे बड़ा आलायकार दुनिया के अंदर जो शैतान का है ना, यानी इंसानी शक्ल में, यानी इंसानी शैतान, अभी सूरह अनाम की तफसीर पढ़ रहे हैं ना, तो उसके अंदर कौन सी वाली आयत आ रही है, शयातीन अल इंस वल जिन्न, है ना, हर नबी के हमने दुश्मन बनाए शयातीन, जो कि इंसानों में से भी हैं और जिन्नों में से भी हैं। तो इंसानों में शैतान का सबसे बड़ा आलायकार कौन है, सबसे बड़ा जो है वो एजेंट कौन है इंसानों में, सबसे बड़ा वो है दज्जाल। ठीक है, वो है दज्जाल। तो इसकी जो एक बातनी वजह है ना, वो है दज्जाल, जो कि शैतान ही का सबसे बड़ा नुमाइंदा है दज्जाल। ठीक है, और ये कैसे, ये हदीस मुबारका से इसकी दलील मिलती है कि नबी अलैहिस्सलाम ने जब दज्जाल के जाहिर होने के वाकयात बताए ना सहाबा को, तो उनमें से एक क्या था, एक बात क्या थी कि जब दज्जाल का जहूर होगा तो उस वक्त जो है वो 1 साल तक दिन होगा, दिन 1 साल तक जो है दिन ही दिन होगा। ठीक है, और फिर बीच में जो है वो कुछ गैप आएगा किसी किस्म का, फिर उसके बाद अगला दिन होगा, यानी एक दिन फिर खत्म हो जाएगा। 1 साल तक दिन रहेगा, फिर उसके बाद वो दिन खत्म हो जाएगा। यानी कैसे खत्म हो जाते हैं दिन, रात आ जाती है, दिन ऐसे खत्म होते हैं ना कि रात आ जाती है, तो रात आ जाएगी इसका मतलब है। फिर उसके बाद अगला दिन नमूदार होगा, वो दिन जो है वो कितना बड़ा होगा, 40 दिन का होगा, ठीक, या 1 महीने का होगा, उस तरह से उस हदीस में। फिर उसके बाद रात आ जाएगी, यानी फिर वो दिन भी खत्म हो जाएगा, फिर रात आ जाएगी, फिर अगला दिन आएगा, वो एक दिन 1 हफ्ते तक चलेगा, फिर उसके बाद रात आ जाएगी, फिर उसके बाद दिन आएगा, और वो दिन जो है वो आम दिनों की तरह से होगा, यानी 24 घंटा। ठीक है, आओगे मकाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, तो एक दिन 1 साल का होगा, कैसे 1 साल का होगा, सूरज की रफ्तार तो चेंज नहीं हो सकती, सूरज की रफ्तार अगर चेंज हो ही ना तो जमीन बाकी नहीं रहेगी उसके बाद। ठीक है, तो एक दिन 1 साल के बराबर हो जाने की और उल्टी सीधी वजूहात लोग बयान करने की कोशिश करते हैं, भाई सीधी सी बात है, रोशनी होगी, चाहे जैसे भी हो वो रोशनी, रोशनी होगी, रोशनी खत्म ही नहीं होकर के दे रही होगी, मुस्तकिल रोशनी चलेगी, मुस्तकिल रोशनी चलेगी, मुस्तकिल रोशनी चलेगी। ठीक है, जिस तरह से अभी 24 घंटे के लिए आपके घर के अंदर मुस्तकिल रोशनी चल रही होती है, आपके शहर के अंदर मुस्तकिल रोशनी चल रही होती है, उसी तरीके से एक अक्सर इलाके के अंदर रोशनी चलेगी। ठीक है, तो जो सहाबा जैसे लोग होंगे वो उसके अंदर हिसाब से वो भी नमाजें पढ़ रहे होंगे, लेकिन बाकी जो लोग होंगे ना वो फिर ये तो बस दिन ही दिन चल रहा है दिन। अब वो उल्टे सीधे वक्त के अंदर सोए पड़े हुए होंगे, जब वो थक जाएंगे तो उस वक्त सो जाएंगे और बाकी वक्त में जो है जागते रहेंगे। ठीक है ना, सड़कों पे मोटरसाइकिलें चलाते रहेंगे और लोगों की जो सोना चाहते भी होंगे ना उनकी भी नींदें हराम कर रहे होंगे, जैसे आजकल हो रहा है। ठीक है, तो अब जो दज्जाल के फितने का नबी अलैहिस्सलाम ने एक निशानी बताई, वो यही आर्टिफिशियल लाइटनिंग का एक्सटेंड हो जाना। ठीक है, एक्सटेंड हो जाना हत्ता कि 1 साल तक जो है वो रोशनी खत्म नहीं होगी, लेकिन हकीकत में वो दिन नहीं होगा, वो हकीकतन दिन नहीं होगा कि वो एक दिन वाकई 365 दिन का हो गया, नहीं, वो हकीकतन दिन नहीं होगा। इसलिए कैसे पता कि वो हकीकतन दिन नहीं होगा, चलो इसका जवाब भी अगर हम आपसे पूछें, वो जो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो 1 साल के बराबर एक दिन होगा, वो हकीकतन एक दिन नहीं होगा, इसकी क्या दलील है कि वो हकीकतन एक दिन नहीं होगा, बल्कि वो सिर्फ इसी तरह का जो कि धोखे का दिन होगा, हकीकतन एक दिन नहीं होगा। एग्जैक्टली, ठीक है, क्योंकि उसी हदीस के अंदर आगे क्या है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम जो है वो हिसाब करके नमाजें अपनी जारी रखोगे, यानी जिस तरह तुम अभी नमाजें पढ़ते हो उसी तरह तुम उस वक्त भी नमाजें पढ़ोगे। तो ऐसा नहीं होगा कि 365 दिन के बराबर जो एक दिन है तो उसके अंदर कुल 5 नमाजें पढ़ोगे तुम, नहीं, कुल 5 नमाजें नहीं होंगी उसके अंदर, बल्कि जिस तरह आज हम हमारे पास कैलेंडर है या हमारे पास जो है वो फोन के ऊपर नमाज का की ऐप है, तो तो उसके अंदर हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई ये टाइम है, अब फजर का टाइम शुरू हो गया, अब जोहर का टाइम शुरू हो गया, अब जो है वो असर का टाइम, फिर मगरिब का टाइम, फिर इशा का टाइम। ठीक है, तो आपको बाहर जाके आसमान पे देखने की जरूरत ही नहीं है, बाहर देखने की जरूरत ही नहीं है कि रोशनी हो रही है कि अंधेरा हो रहा है, बस आपके पास जो है वो घड़ी मौजूद है, आपके पास जो है वो नमाज के टाइमिंग्स का चार्ट मौजूद है और आप अपनी नमाज पढ़ लेते हैं। बाहर जो है वो रोशनी हो रही है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो उसी तरीके से उस वक्त भी ऐसे ही होगा कि बाहर तो रोशनी हो रही होगी, ठीक है, लेकिन दिन तो उसी तरतीब पर होगा ना जिस तरतीब पर होता है दिन। तो लोग जो है वो 5 नमाजें और 5 × 365 यानी टोटल उतनी ही नमाजें पढ़ेंगे जितनी एक साल में नमाजें पढ़ते, सिर्फ 5 नमाजें नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो हकीकत में दिन कुछ थोड़ी होगा। ठीक है, तो अब जो ये इस हदीस से हमें क्या पता चलता है कि जब दुनिया फितने दज्जाल तक पहुंच जाएगी तो उस वक्त दुनिया का हाल क्या होगा। भाई फितने दज्जाल का मतलब क्या है कि इतना बड़ा फितना दुनिया में आएगा, इतना बड़ा फितना दुनिया में आ जाएगा जितना आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से आज तक नहीं आया। इतना बड़ा फितना जितना दज्जाल के जहूर के वक्त होगा उतना बड़ा फितना दुनिया में कभी भी नहीं हुआ। तो दुनिया गोया के फितने की एक्सट्रीम तक पहुंच जाएगी। फितने की एक्सट्रीम जो हो सकती है ना वो एक्सट्रीम हालत दज्जाल के मौके पर होगी। और उस वक्त दुनिया के अंदर क्या हो रहा होगा, रोशनी रोशनी हो रही होगी, हर तरफ रोशनी रोशनी होगी। तो सबसे बुरे फितने का ताल्लुक फिर रोशनी के साथ हो गया। कौन सी वाली रोशनी, आर्टिफिशियल रोशनी। ठीक है, तो ये कोई मामूली फितना नहीं है, ये रातों को जागना, हर वक्त जो है वो रोशनी का होना, ये कोई मामूली फितना नहीं है, ये सबसे बड़े फितने का हिस्सा है, ये फितने दज्जाल का हिस्सा है। ठीक है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ फितने दज्जाल, नाइट का डे बन जाना। ठीक है, तो इस वजह से ये बात कहना कि इसके जाहिर है जितना बड़ा फितना होगा तो उतनी ज्यादा मुश्किल होगी ना, तो उसके खिलाफ जाना जो है वो इवन तालीमी निजाम के खिलाफ जाने के से भी ज्यादा मुश्किल है, और औरत को औरत बनाने और मर्द को मर्द बनाने से भी ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, इस वजह से बात कह रहे हैं हम। अच्छा, सूरज अपने वक्त पर निकलेगा और गुरूब भी अपने वक्त पर ही होगा। एग्जैक्टली, ठीक है, तो दिन की हकीकत कोई चेंज नहीं होगी इस वक्त में। बहरहाल, तो हम जो है वो फिर हजरत का बयान है उसके अंदर ये वाला मौजू पढ़ रहे थे कि इंसान की जो जिंदगी गुजरती है वो 7 ईयर स्टेजेस में गुजरती है, और इस तरह के स्टेजेस जो है ना वो पहला स्टेज भी 7 साल पर मुश्तमिल होता है, दूसरा स्टेज फिर अगले 7 साल पर मुश्तमिल होता है, तीसरा फिर अगले 7 साल पर मुश्तमिल होता है। इस तरह से पढ़ते पढ़ते हमने 5 साइकिल्स पिछली क्लास के अंदर पढ़ लिए थे, अब जो है वो छठा साइकिल हम पढ़ रहे हैं जो कि 35 से 42 ईयर्स, ठीक है, 35 से 42 साल तक का जो इंसान की जिंदगी के साल होते हैं, तो वो छठा साइकिल। ये कुछ साइंसदानों ने इस तरह की बात करी है, हजरत ने उसको पसंद किया और उसको जो है वो अपने बयान के अंदर नकल कर दिया। ठीक है, तो 35 to 42 ईयर्स, तो फरमाते हैं कि फिर जब एक साइकिल और गुजरता है तो उम्र 40 साल की हो जाती है, तो इंसान मेंटली यानी अकली तौर पर अपने तजुर्बे में पुख्ता हो जाता है। ठीक है, चुनाचे अंबिया कराम ने 40 साल की उम्र में अपनी नबूवत का इजहार फरमाया। ठीक है, अच्छा, अंबिया की जो उम्र होती थी ना 40 साल की, वो शमसी एतबार से मेजर नहीं की जाती बल्कि वो कमरी एतबार से मेजर की जाती है, और हर कमरी साल जो होता है वो शमसी साल से 10 दिन कम होता है। ठीक है, तो कमरी उम्रें जो होती हैं ना वो ज्यादा तेजी से बढ़ती हैं और शमसी उम्र जो होती है वो पीछे पीछे ड्रैग कर रही होती है, क्योंकि जब कमरी एतबार से एक बच्चा 1 साल का हो गया तो शमसी एतबार से अभी तक वो 1 साल का नहीं हुआ है ना, 10 दिन के बाद जाकर के वो 1 साल का होगा शमसी एतबार से, ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक। और लूनर कैलेंडर के मुताबिक वो 10 दिन पहले 1 साल का हो गया। उसी तरीके से जब वो 2 साल का हो जाएगा तो शमसी एतबार से वो 2 साल का नहीं होगा, बल्कि शमसी एतबार से वो 2 साल में 20 दिन कम होगा। अभी भी 20 दिन के बाद जाके वो 2 साल का होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अभी हमने कोई कैलकुलेट नहीं किया। कभी जहन में बड़ी दफा काफी दफा ये बात आती है, लेकिन कभी इसको कैलकुलेट करने का मौका नहीं मिला कि 40 ईयर्स जो कमरी होते हैं वो कितने शमसी ईयर्स बनेंगे। कमरी 40 कितने शमसी बनेंगे। अब आप जो है वो 10 10 10 10 10 जो है वो सब्ट्रैक्ट करते रहें तो मेरे हिसाब से आपको शमसी ईयर्स भी मिल जाएंगे। तो अंबिया अलैहिस्सलाम ने 40 साल की उम्र में अपनी नबुवत का इजहार फरमाया तो वो 40 कमरी साल होते थे। ठीक है, हदीस पाक में भी है कि जो बंदा 40 साल का हो जाए और वो दीन पर ना आए, क्या मतलब वो नमाजें पढ़ना नहीं शुरू कर दे। 40 साल से पहले क्या नमाजें उसके ऊपर फर्ज नहीं हुई थी? अब 40 साल की उम्र में नमाजें पढ़ना शुरू कर दे, यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन बहरहाल हदीस को अल्फाज तो तर्जुमा तो पहले हम पढ़ लें, उर्दू के अंदर जो लिखा हुआ यहाँ पर कि फरमाया कि जो बंदा 40 साल का हो जाए और वो दीन पर ना आए तो शैतान उसके चेहरे पर हाथ फेरता है और कहता है कि तू मेरा पक्का मुरीद है, अब तू सारी जिंदगी मेरे साथ रहेगा। ठीक है, तुम मेरे पक्के शागिर्द बन चुके हो, मेरे मुरीद बन चुके हो, मेरे सालिक बन चुके हो, यानी मेरे तरीके पे चलने वाले। सालिक किसको कहते हैं? तरीके पे चलने वाला, रास्ते पे चलने वाला। तो शैतान का सालिक कौन होगा? जो शैतान के रास्ते पे चलने वाला हो। ठीक है, तो अब तुम ना सारी जिंदगी मेरे साथ ही रहोगे। गोया 40 साल से पहले पहले बंदे को चाहिए कि वो नेकी की लाइन को इख्तियार कर ले। ठीक है, मतलब क्या कि 40 साल में ना एक पुख्तगी आ जाती है, एक मेच्योरिटी आ जाती है। ठीक है, अब उसके बाद जो है ना वो तब्दील होना मुश्किल हो जाता है, बल्कि बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है चेंज करना। तो जो आपकी आदतें 40 साल तक बन चुकी होती हैं ना, वो आदतें उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकेंगे। अब उसके बाद अगर आपको एहसास हो भी जाए, भाई तौबा जो है ये कोई 40 साल में तौबा का दरवाजा बंद क्यों थोड़ी हो जाता है? ठीक है, क्या 50 साल का बंदा तौबा नहीं कर सकता अपने गुनाहों से? 60 साल का बंदा तौबा कर सकता है, 80 साल का बंदा तौबा कर सकता है, और अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल भी फरमा लेते हैं। ठीक है ना, मरने से बस थोड़ी देर पहले तक तौबा का दरवाजा खुला होता है, चाहे वो 100 साल का बंदा हो, जितने साल का भी हो। ठीक है, तो फिर यहां पे नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं, जब तौबा का दरवाजा खुला होता है 60 70 80 साल की उम्र तक, तो फिर नबी अलैहिस्सलाम 40 साल के बंदे के बारे में क्यों फरमा रहे हैं कि अगर वो दीन पर ना आए तो फिर शैतान उसके चेहरे पर हाथ फेरता है, कहता है कि तू मेरा पक्का मुरीद है, सारी जिंदगी तू मेरे मेरे साथ रहेगा। अब इसका क्या मतलब है? ठीक है, तौबा का दरवाजा तो खुला है इसके बाद, भाई इसका मतलब ये है कि इसके बाद भी वो तौबा तो कर सकता है, लेकिन अब जो तौबा करेगा ना, तो अब उसके बाद रोने धोने के अलावा उसके पास और चारा नहीं रहेगा, है ना। तौबा करने का मतलब ये नादिम होना पिछली जिंदगी के ऊपर, तो नदामत में फिर आंसू भी निकलते हैं ना, तो इसको कहते हैं रोना धोना। अब ये रोना धोना तो बचाएगा अल्लाह ताला के सामने, और अल्लाह ताला उसके रोने धोने को कबूल भी कर लेंगे, उसके गुनाहों को माफ भी कर देंगे बेशक, लेकिन ये अपनी आदतों को चेंज नहीं कर सकेगा। ये अपने जो इसकी जो लॉस्ट स्किल्स हैं उनको ये रिकवर नहीं कर सकेगा। ठीक है, जो उसने गुनाहों के अंदर जाया कर दिया ना अपनी उम्र, जाहिर उम्र तो जाया हो गई, वो तो ऑफ कोर्स कोई नहीं रिकवर कर सकता, किसी भी उम्र को रिकवर नहीं कर सकता, चाहे वो 10 साल का बच्चा ही क्यों ना, वो अपने 9 साल रिकवर नहीं कर सकता। लेकिन जो इसने आदतें बना ली हैं, जो इसका मिजाज बन गया है, ठीक है ना, ये उसको चेंज नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो इससे पहले पहले जो है ना वो नेकी की जिंदगी पर बंदा आ जाए तो फिर वो अपने आप को चेंज भी कर सकता है, अपने तौर तरीकों को भी चेंज कर सकता है। उसके बाद नहीं किया तो तौबा तो कर सकता है, रोना धोना तो कर सकता है, लेकिन वो सलाहियतें इसके अंदर नहीं रहेंगी जिसकी बुनियाद पर ये नेक आमाल करके बड़ी बड़ी नेकियां कमा ले, वो नहीं, वो ये नहीं कर सकेगा। ठीक है, कुरान मजीद के अंदर भी 40 साल का बड़ा अहम जिक्र आया है, ठीक है, कुरान मजीद में सूरह नमल की आयत है ना, ये फरमाया हत्ता इदा बलगा अशुद्दहु व बलगा अरबईना सना, कि जब वो अपनी पूरी ताकत को पहुंच गया और वो 40 साल की उम्र तक पहुंच गया, ये मोमिन की बात हो रही है, तो उस मोमिन ने कहा काला रब्बे औज़िअनी अन अशकुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमला सालिहन तरदाहू व अस्लह ली फी ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. يعني اے میرے رب، کہ وہ اپنے رب سے کہتا ہے، جب وہ 40 سال کا پہنچ گیا نا، تو پھر وہ اپنے رب سے کہتا ہے کہ اے رب مجھے اس بات کا پابند بنا دیجیے کہ میں ان نعمتوں پہ آپ کا شکر ادا کروں جو آپ نے میرے اوپر کری اور میرے والدین کے اوپر کری. ٹھیک ہے، تو 40 سال کا تذکرہ قرآن مجید میں اس انداز میں آیا ہے، تو وہ وہی بندہ کرتا ہے نا جس نے کہ 40 سال کی زندگی میں توبہ اس سے پہلے کر لی ہوتی ہے اور اب جو ہے وہ نیکی کی زندگی پر آ چکا ہوتا ہے. اچھا ماشاءاللہ، انہوں نے کیلکولیٹ کر کے بھی بتا دیا کہ تقریباً 1 سال 1 مہینے کا فرق بنے گا 40 سال میں. ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ کی کیلکولیشن ٹھیک ہے بالکل، تو جس وقت قمری اعتبار سے کوئی 40 سال کا ہو جاتا ہے، تو اس وقت شمسی اعتبار سے وہ 41 سال 1 مہینے کا ہوگا. ٹھیک ہے، تو 41.1 41 years and 1 month شمسی اعتبار سے اس کی عمر ہوگی. ٹھیک ہے، تو کوئی خاص فرق نہیں ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے نا، وہ جو یہ جو سٹیجز آف لائف کی بات ہو رہی ہے نا، 7 year stages of life، تو اس کی بھی یہی سگنیفیکنس ہے کہ ہر سٹیج کے اندر کچھ تبدیلیاں آتی ہیں جو کہ اسی ایک سٹیج کے اندر مکمل ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ exactly 40 years کے اندر ہر بندے کے اندر یہ تبدیلی آ جائے گی، پھر exactly 41 years کے اندر ہر بندے کے اندر یہ تبدیلی آ جائے گی، ایسا نہیں ہوتا. بلکہ یہ جو 35 سے لے کے 42 ایئرس کا جو سائیکل ہے یا جو سکس سٹیج ہے، تو سکس سٹیج کے اندر اندر جو ہے نا، وہ اکثر لوگوں کے درمیان، اکثر لوگوں کے اندر یہ والی تبدیلیاں آ جاتی جب وہ 35 سے لے کر کے 42 ایئرس کی ایج میں ہوتے ہیں. کسی کے اندر ہو سکتا ہے 36 ایئرس کی ایج کے اندر یہ تبدیلیاں آ جائیں، کسی کے اندر 37 ایئرس کی ایج میں یہ تبدیلیاں آ جائیں، اور تھوڑی 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 کر کے بھی تبدیلیاں ود ان دس 7 year period آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے نا اس کے اندر یہ ہے گویا کہ ایک الاسٹسٹی ہے، یا ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو انگریزی میں، یعنی ایک بالکل ایگزیکٹ پیریڈ نہیں ہے، بالکل ایک پریسیشن والا ٹائم نہیں ہے کہ اس میں تبدیلی آ جاتی ہے، بلکہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو، ایک حدود گویا کہ یہ لوور لوور لمٹ اور اپر لمٹ. ٹھیک ہے، یہ لوور لمٹ اینڈ اپر لمٹ اس طریقے سے آبزرو کرنے والوں نے، ہاں فلیکزیبلٹی کہہ سکتے ہیں، فلیکزیبل ہے کہ ود ان 35 to 42 ایئرس یہ ایک فلیکزیبل ٹائم پیریڈ ہے، اس کے اندر یہ بڑی تبدیلیاں آ جاتی ہیں عام طور پہ لوگوں کے اندر. ہو سکتا ہے کچھ ایکسیپشن بھی ہو کہ اس کے اندر جو ہے اس سے پہلے، مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام، رائٹ. اب ہر نبی کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں، عیسیٰ علیہ السلام کو 24 سال کی عمر میں. ٹھیک ہے، تو اب عیسیٰ علیہ السلام از این ایکسیپشن، رول نہیں ہے وہ، ایکسیپشن ہے نا. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے للاکثر حکم الکل، کہ اکثر لوگوں میں ایسی تبدیلیاں جو ہیں وہ 35 سے 42 میں آ جاتی ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد 7واں سائیکل 42 سے 49 ایئرس کا بنتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ پھر جب 7 سال اور گزرتے ہیں تو عمر 49 ایئرز ہو جاتی ہے، گویا کہ زندگی کی آدھی سینچری گزر چکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تقریباً 50 سال ہو گئے نا برس کے بعد 49 ایئرز تک. تو اس عمر میں انسان کے اندر ایجنگ ایفیکٹ یعنی بڑھاپے کا اثر شروع ہو جاتا ہے. اب چونکہ جسم نے 50 سال گزار لیے، اس لیے جو قریب کی نظر ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، अक्सर लोगों को 50 साल के बाद रीडिंग ग्लासेस लगवाने पड़ते हैं, एंड आई एम वन ऑफ देम। हमें जो जानते हैं वो जानते हैं कि हमारी रीडिंग ग्लासेस बस आज से तकरीबन 2 ढाई साल पहले ही लगे, ठीक है, और अभी उम्र जो है वो 52 ईयर्स की बन रही है अंदाजन तकरीबन। तो अक्सर लोगों को 50 साल के बाद रीडिंग ग्लासेस लगवाने पड़ते हैं क्योंकि उनकी नजर कमजोर होती है। ये एजिंग इफेक्ट होता है जो हर बंदे को महसूस होता है। तो जब मुझे ग्लासेस लगे तो मैंने डॉक्टर से भी पूछा, और फिर जो है वो चश्मे की दुकान वाला जिसने फिर से जो है वो आई टेस्ट किया था ताकि भाई सही चश्मा दे सके, उससे भी ये पूछा कि भाई कोई दवा वगैरह नहीं होती, कोई तरीका नहीं है कि इसको जो है वो रिवर्स किया जा सके। तो दोनों ने यही जवाब दिया कि नहीं, ये तो एज के साथ होता ही है, ठीक है ना, अब ये रिवर्स नहीं होने वाला। सही है, तो जिस तरह उम्र रिवर्स नहीं हो सकती तो उसी तरह आंखों की खराबी भी रिवर्स नहीं हो सकती। हमें तो यही फतवा दिया गया था। बहरहाल क्या थैंक्स टू आर्टिफिशियल लाइटिंग किड्स को भी लग रहे हैं चश्मे लग रहे हैं। हाँ, अब तो बच्चों को भी चश्मे लग रहे हैं। बच्चों को चश्मे भी बहुत रीजन से लग रहे हैं, वो सिर्फ आर्टिफिशियल लाइटिंग को वाहिद रीजन नहीं होता, जेनेटिक डिसऑर्डर वगैरह भी होता है और दूसरी इलनेसेस भी होते हैं जो तो बचपन में भी ग्लासेस लग जाते हैं। अच्छा, वो टीवी की स्क्रीन देख देख करके ग्लासेस लगना वो एक मसला है, लेकिन दूसरे भी रीजन होते हैं जिसकी वजह से बच्चों को क्लास लगते हैं। अच्छा, तो ये हो गया 7वां साइकिल। अब उसके बाद 8वां साइकिल, ये 49 से 56 ईयर्स की एज में ये 8वां साइकिल होता है। फरमाते हैं कि फिर अगर एक साइकिल और हो जाए तो इंसान की जिंदगी के 56 साल गुजर जाते हैं, 56 है? तो ये वो उम्र है कि जिसमें औरत के मखसूस अय्याम खत्म हो जाते हैं और अब उसके बाद उसके लिए बच्चे की विलादत मुश्किल हो जाती है। 56 साल के बाद औरतों के यहाँ बच्चे की विलादत के चांसेस खत्म हो जाते हैं क्योंकि उनका माहाना साइकिल ही खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या आपने लिख दिया कि उनको जल्दी मिली इसलिए होगी कि 35 साल में आसमान में उठा लिया गया, 33 साल में आसमान में उठा लिया गया, ये भाई जन्नत में नहीं पहुंचे हैं वो अभी। अगर आप इसको जन्नत के बारे में हदीस से जोड़ने की कोशिश कर रही हैं, खुद से अगर कोशिश कर रही हैं तो ना करें तो बेहतर है, ठीक है। और अगर किसी जगह आपने पढ़ा है तो फिर उसका रेफरेंस भी बता दें आपने कहाँ ये बात पढ़ी है कि उनको जल्दी इस वजह से मिल गई थी नबूवत कि उनको 33 साल की उम्र में आसमान में उठाया जाना था या इस तरह की बात, ठीक है। तो अल्लाह आलम, ऐसी हमने तो कहीं नहीं बात सुनी। एनीवेज, तो फरमाते हैं कि ये 56 साल की उम्र में ना फिर ये सिलसिला औरतों का फिर वो मेनोपॉज जिसको कहा जाता है। तो अब इसमें भी एक और बड़ा अच्छा नुक्ता दिल में आता है कि ये जो जाहिर पीरियड्स का जो सिलसिला होता है तो ये औरत के लिए एक तकलीफ होती है, मुश्किल होती है, ठीक है। तो इस मुश्किल के साथ क्या चीज अल्लाह ताला ने जोड़ के रखी, औलाद का होना, जो कि एक औरत के लिए गोया के दुनिया की सबसे बड़ी नेमत होती है, ठीक है। औलाद का होना अहम तरीन नेमत होती है हिदायत के बाद ऑफ कोर्स, ठीक है, लेकिन वो तकलीफ के साथ ही आती, और जब तकलीफ खत्म हुई तो वो नेमत भी खत्म हो गई। तो अल्लाह ताला ने ये दुनिया ऐसे ही बनाई है, ठीक है, ये जन्नत नहीं है कि नेमत मिल रही हो लेकिन साथ साथ कोई तकलीफ ना मिल रही हो, ये जन्नत नहीं है। ये तो जन्नत में होगा कि जहां पे नेमत होगी तकलीफ कोई नहीं होगी, हिसाब किताब भी तो तकलीफ ही है ना। तो जन्नत की नेमत के साथ ना कोई फिजिकल तकलीफ होगी ना हिसाब किताब की तकलीफ होगी, लेकिन इस दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस दुनिया में ना फिर बस एक तो आफियत की दुआएं मांगनी है अल्लाह ताला से, तमन्ना, और अल्लाह ताला से दुआएं आफियत की मांगनी, क्या अल्लाह दुनिया की जो तकलीफें हैं ना ये बस आप मिनिमाइज कर दें, कम से कम कर दें मेरे ऊपर, इसी को आफियत कहते हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि फिर भी जो आ जाए तो बस उसके ऊपर सब्र करना होता है, ठीक है, और जो नेमतें हैं उनके ऊपर शुक्र करना होता है। तो नेमतें ना तो बड़बड़ करके जन्नत की नेमत बन जाएंगी दुनिया में, शुक्र करने की वजह से ये नहीं होगा कि आपको दुनिया में जन्नत मिल जाएगी, लेकिन जन्नत के थोड़े थोड़े मजे जरूर आ जाएंगे, अगर शुक्र करेंगे तो। और जो तकलीफें इस दुनिया की जिंदगी के साथ लगी हुई हैं उनके ऊपर अगर अगर सब्र करेंगे तो फिर अल्लाह ताला सब्र के ऊपर बेइंतहा सवाब अता फरमाएंगे, जो कि फिर जन्नत में जाके कैश करवा लीजिएगा उसको। ठीक है, तो दुनिया की जिंदगी की तो यही हकीकत है। अच्छा, अब हम नवे साइकिल पे पहुंचते हैं। तो नवा साइकिल जो है वो 56 से 63, 56 से 63, ठीक। तो फरमाते हैं कि फिर 7 साल का एक साइकिल और गुजर जाए तो इंसान की उम्र 63 साल हो जाती है। यानी इस साइकिल के अंदर फिर उसके अंदर मजीद एक किस्म की तब्दीलियां आती हैं, तो उसकी उम्र फिर इन तब्दीलियों से गुजरते 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 बिलाखिर 63 साल की हो जाती है। ठीक है, ये वो उम्र है कि जिसमें इंसान के दिमाग की याददाश्त आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता, हत्ता कि उसको शुरू में पता भी नहीं चलता कि उसकी दिमागी सलाहियतें जो है वो कम हो रही हैं। इसी को तदरीजन और आहिस्ता आहिस्ता का लफ्ज इसी वजह से इस्तेमाल किया जाता है कि जो कि महसूस ना हो, गैर महसूस तौर पर इंसान भुलक्कड़ बनना शुरू हो जाता है। इसीलिए दुनिया की मुख्तलिफ मुख्तलिफ कंपनियों में जो रिटायरमेंट की उम्र है वो कहीं 60 साल है और कहीं 62 साल है। 62 ईयर्स तक रिटायरमेंट हो ही जाती है। चूंकि 60 और 62 साल की उम्र में इंसान की याददाश्त वो नहीं रहती जो पहले थी, तो लोग उसको रिटायर कर देते हैं कि अब आप रिटायरमेंट की उम्र गुजारें। ठीक है, अब वो रिटायरमेंट के बाद जो है क्या होता है कि अब तक जो है वो उसकी सेविंग्स भी हो चुकी होती हैं, उसकी उम्र भी जो है वो गुजर चुकी होती है, उसके अंदर एक सेटलमेंट आ जाती है। ठीक है, अब इस वक्त जो है ना वो अगर अच्छी सिफात का मालिक होगा, यानी उसका मिजाज अच्छा होगा और फायदेमंद इल्म इल्म नाफे हासिल कर चुका होगा और उसके मुताबिक अमल भी कर लेता होगा, तो अब ये शख्स जो होता है ना रिटायर्ड बंदा, ये इंतहाई कीमती हो जाता है, इंतहाई कीमती बन जाता है। क्यों? इसलिए कि अब ये अपने तजुर्बे की रोशनी में और अपने इल्म की रोशनी में दूसरे इंसानों को फुल टाइम फायदा पहुंचा सकता है। पहले तो दफ्तर में, कारोबार में, दुनिया के झमेलों में लगना पड़ता था, तो इस वजह से पार्ट टाइम फायदा पहुंचाता था, अब ये फुल टाइम फायदा पहुंचा सकता है। ठीक है, लेकिन शर्त यही है कि अब तक उसने जो उम्र थी ना वो जाया नहीं करी थी, बल्कि अपना इल्म और अमल को जो है वो अच्छा बनाया। तो वो फरमाते हैं कि यही राज है कि अल्लाह ताला ने इस उम्र में अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास वापस बुला लिया था, इसलिए कि अगर 63 साल से ज्यादा उम्र होती तो कुफार ताना देते कि जी इनकी तो उम्र ही ऐसी थी कि वो भुलक्कड़ उम्र होती है, वो बातें भूलते थे, उनको समझ ही नहीं लगती थी, इसलिए उनकी तालीमात में कोताही है, कमी है। तो अब इस वजह से नहीं अल्लाह ताला ने उनको, नबी अलैहिस्सलाम को वापस बुला लिया कि लोग क्या कहेंगे। भाई अल्लाह को क्या परवाह कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है ना, अल्लाह ताला तो वैसे भी लोगों के, काफिरों के भी रब अल्लाह ही है ना। ठीक है, तो वो तो हजरत ने एक बात समझाने के लिए इस तरह की बात फरमा दी है कि भाई लोग ताना देते कि उनकी उम्र, ये एक मुहावरतन इस तरह से बात कह दी जाती है, लेकिन जाहिर सी बात है ऑफ कोर्स हजरत को भी ये बात अच्छी तरह से पता थी कि लोगों के तानों की वजह से को थोड़ी अल्लाह ताला अपने फैसले फरमाया करते हैं। ठीक है ना, लेकिन एक बात तो पक्की ठक्की है ना कि भाई अल्लाह ने ये निजाम बनाया है एंड अल्लाह ताला चाहते थे कि मेरे नबी बगैर किसी नुक्स के दुनिया में जिंदा रहे। ठीक है ना, यानी नुक्स की तरफ जाने से पहले ही नबी को वापस बुला लिया, जो एक फिजिकल नुक्स होता है, रूहानी नुक्स तो नबी के अंदर आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो इस जमाने में, जिस जमाने में हम और आप जिंदा रहते हैं, इस जमाने में इंसान अपनी फिजिकल पीक पर इस उम्र में पहुंचता है, पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है, नूह अलैहिस्सलाम का मामला ये नहीं था कि 62 ईयर्स के बाद जो है ना वो उनका डिक्लाइन शुरू हो गया था, वो तो 9.5 9.5 नहीं 1000 साल जिंदा रहे ना। ठीक है, तो क्या वो बीमारियों में जिंदा रहे 1000 साल तक? नहीं, बीमारियों का वो तो 950 साल के बाद तो उन्होंने कश्ती बनानी शुरू करी। फिजिकली फिट होंगे तो वो कश्ती बनाते थे, और उसके बाद उन्होंने और भी सारे जो काम किए। तो और उसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम और दूसरे जो अम्बिया का आता है, 100 100 साल, 150 100 साल, 300 300 साल उम्र पहले जमाने में, तो एवरेज उम्र जो है वो 300 350 साल होती थी। ठीक है, नूह अलैहिस्सलाम की उम्र तो एक्सेप्शनली ज्यादा थी। इवन उनके जमाने में भी मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इंसानों की उम्र 300 350 साल होती थी, इनकी उम्र जो है ना एक्सेप्शनली ज्यादा थी नूह अलैहिस्सलाम की, लेकिन 300 साल। तो अब नबी अलैहिस्सलाम के जमाने तक जो है ये इंसान जैसे जिस तरह इंसानों का कद घट घट करके छोटा हो गया, ठीक है, इंसानों की फिजिकल ताकत भी पहले के मुकाबले में कम हो गई। ठीक है, उसी तरीके से इंसानों की जो एवरेज उम्र थी ना वो भी पहले के मुकाबले में कम, ठीक है, और वो इतनी हो गई 62 ईयर्स। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इस टाइम के ऊपर जब बेहतरीन उम्र में थे उसके बाद फिर आपस में वापस बुला लिया। थोड़ी सी आखिरी जमाने के अंदर नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर जो नकाहतारी हुई, जो बिस्तर मर्ग का जमाना था, उसके अंदर जो है वो नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर कुछ अहवाल आए जो कि सीरत की किताबों के अंदर दर्ज है। तो जो ऐब की उम्र थी इससे पहले ही अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुला लिया कि मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई उंगली भी ना उठा सके, कोई ऐब ना लगा सके, कि जी ये तो जो है ना वो उस उम्र में थे, कि जिस उम्र में इस जमाने के लोग जो है ना वो दिमागी तौर पर नुक्स का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर एक बहुत अहम नुकता हमारे लिए, और उसके बाद फिर हमारे साथ खत्म कर देंगे क्योंकि टाइम हमारा खत्म हो चुका है, कि इस उम्र के बाद ये चीज हो जाती है, शुरू हो जाती है ना, ठीक है, दिमागी कमजोरी वाली उम्र शुरू हो जाती है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि इंसान एकदम से जो है वो मेंटली रिटार्डेड हो जाए, बिल्कुल जो है वो दीवानों वाली हरकत करना शुरू हो जाए, ऐसा तो नहीं होता ना, आहिस्ता आहिस्ता होता है ना। ठीक है, हर एक के साथ ये जो डिटेरियोरेशन आती है ये आहिस्ता आहिस्ता आती है, और दूसरी बात ये कि आहिस्ता आहिस्ता की भी रफ्तार जो होती है वो हर एक के अंदर डिफरेंट होती है। किसी के अंदर जो तब्दीली आ रही है वो जरा ज्यादा आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, और किसी के अंदर जरा कम आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। क्या मतलब कम आहिस्ता आहिस्ता आने का मतलब क्या होगा, तेजी से आ रही है कंपेयर टू समवन एल्स। ठीक है, किसी के अंदर बहुत आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आ रही है, किसी के अंदर जरा कम आहिस्ता आहिस्ता यानी उसके मुकाबले में जरा तेजी तेजी से तब्दीली आ रही है। ठीक है, ये फर्क किस बुनियाद पर होता है, किसी के अंदर कम यानी किसी के अंदर बहुत आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आ रही है कि उसका दिमाग जो है वो दिमागी सलाहियतें बहुत बहुत स्लोली डिटीरियोरेट हो रही है, और किसी के अंदर दिमागी सलाहियतें तेजी के साथ डिटीरियोरेट हो रही है। तो इसके मेडिकल रीजंस भी डॉक्टर्स भी देते हैं, और जो हमारे मशाइख देते हैं वो नेकी तकवा वाली जिंदगी कुरान के साथ जिसकी मशगूलियत ज्यादा होती है ना तो उसके अंदर भी डिटेरियोरेशन आती है, लेकिन बहुत ज्यादा आहिस्ता आहिस्ता आती है, और जिसकी जिंदगी में जो है वो फिस्को फुजूर ज्यादा होता है तो उसकी जिंदगी में भी ये आ रही होती है, याददाश्त की कमी हो रही होती है, और जो है वो भुलक्कड़ बन रहा होता है, लेकिन वो तब्दीली ज्यादा तेजी से आ रही होती है। ठीक है, लेकिन आ रही होती है, सब में आ रही होती है। ठीक है, इसी वजह से एक बहुत अहम नुक्ता ये याद रखें कि नेक लोगों के अंदर भी ऐसा होता है। ठीक है, ये वाली जो है ना भूल जाने की बातें ये नेकों के अंदर भी होती हैं, और इसी तरीके से कुछ मिजाज से मगलूब हो जाना, जैसे बुढ़ापा है ना, बुढ़ापा जो है ये एक अच्छी खासी प्रॉब्लम होती है, नेकों के ऊपर भी बुढ़ापा आता, वो भी अपने बुढ़ापे की वजह से मगलूब होकर के जो है ना कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं या कह जाते हैं जो कि वो पहले कभी भी नहीं कहते, अपनी जवानी में वो कभी ऐसी बातें नहीं करते, राइट, अपने 40 साल से लेकर के जो उनका 60 इयर्स का पीरियड था
तो उसके अंदर वो कभी ऐसी बातें नहीं करते, लेकिन बुढ़ापे में आकर के, बुढ़ापे के हालात से मकलूब होकर के वो कर देते हैं ऐसी बात। तो अब हमें क्या करना होता है, यानी जवानों को क्या करना चाहिए? ठीक है, जवानों को उनके साथ निभाना होता है, जवानों को उनके साथ बूढ़ों के साथ निभाना होता है। अब बूढ़ों के अंदर वो वाली सिफात आप अगर तलाश करना शुरू हो जाएं जो कि उनकी जवानी के वक्त में थी, वो आपको नहीं मिलेंगी। अब वो आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो अब ना उनके साथ जो हुस्ने सलूक करना होता है, उनके गलत बातों को जो बर्दाश्त करना होता है, ठीक है, एक तो ये अल्लाह की रजा की वजह से करना होता है, अल्लाह की रजा की खातिर करना होता है ये वाला काम, ठीक है ना? और दूसरी इसकी रीजन ये भी बनती है कि भाई जिस जमाने में वो अच्छी उम्र में थे, तो उस वक्त हमें जो उनसे खैर मिली है, हमें जो उनसे फायदे मिले हैं, नाउ इज द टाइम टू रीपे, ये वक्त है कि जिसके अंदर हमें उसका बदला, हमको जितना हम कर सकते हैं, राइट, पूरा तो बदला नहीं चुका सकते, लेकिन जितना हम कर सकते हैं उतना तो हम करें ना। अब उनके ऊपर बुढ़ापा आ गया है, अब वो मजबूर हो गए, अब वो माजूर हो गए, राइट? यही मामला अपने सगे वालिदैन के साथ भी करना होता है, राइट? आप में से किसी के वालिदैन को आपने बुढ़ापे की उम्र में देखा, तो भाई अब वो बुढ़ापे में कैसी मुश्किल हो जाती है, खाली उनके लिए मुश्किल नहीं हो जाती, जो उनके साथ रहने वाले लोग होते हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाती है ना। तो अब उनकी जो खिदमत करनी होती है, उनकी जो बातें सुननी पड़ती हैं, उनकी जो वो सलवात जो भी वो आपको सुनाते हैं या आपके घर वालों को सुनाते हैं या आपके बच्चों को सुनाते हैं, राइट, ये सब कुछ जो करना होता है वो क्यों करना होता है? अल्लाह की रजा की खातिर, नंबर 1, ठीक है ना? और फिर ये भी कि भाई उन्होंने जो है, जो हम जब छोटे थे तो उन्होंने जो हमारे लिए जो जो कुछ किया, तो भाई अब हमें मौका मिला है तो हम उनके लिए करें ना, ठीक है? यही मामला रूहानी वालदेन के साथ भी होता है। रूहानी वालदेन कौन होते हैं? मशायख, ठीक है? मशायख की भी उम्र जब बढ़ जाती है ना 62 साल से, नबी अलैहि सलाम को तो अल्लाह ताला ने 63 साल में उठा लिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तो नहीं बढ़ी, ठीक है ना? लेकिन अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम की सीरत के अंदर भी इशारा छोड़ दिया इस बात का, इशारा रख दिया इस बात का कि देखो जब इंसान बूढ़ा हो जाता है ना तो ऐसा होता है। ये इशारा नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में भी अल्लाह ताला ने हमारे लिए, हमारी हिदायत के लिए रख दिया। नबी अलैहिस्सलाम की सीरत में हमारे अकाबरीन ने नकल किया है कि एक दफा नबी अलैहिस्सलाम को दवाई पिलाई जा रही थी, नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं, मैं नहीं पीऊंगा दवाई, हालांकि दवाई पीना ये सुन्नत से साबित है ना, असबाब को इख्तियार करना। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में हमें सिखाया कि असबाब इख्तियार करने, दवा दारू करनी है, दारू नहीं करनी, दवा करनी है, राइट, दवा करनी है, लेकिन सहाबा जो है वो दवाई पिला रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम नहीं, मैं नहीं पीऊंगा दवाई, ठीक है? तो फिर किसी तरीके से आप ससम को या तो जब नींद आई तो उस वक्त दवाई पिला दी गई, तो जब नबी अलैहिस्सलाम जागे ना तो अब पता चली हाँ भी दवाई मुझे पिला दी इन्होंने। उन्होंने कहा किसने पिलाई मुझे दवाई? इन्होंने पिलाई है, बता दिया गया भाई इन्होंने पिलाई है। आपने फरमाया कि इनको भी पिलाओ, ठीक है, इनको भी पिलाओ। अब ये जो आप सरसर ने ये अमल किया, ये अमल एक थोड़ा सा हट करके अमल है ना, ठीक है ना, कि भाई इस तरह से क्यों दवाई पीने में, ये तो अच्छी बात नहीं है कि दवाई पीने में जो है आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं, और फिर जिसने पिलाई है जो फिर उसको भी आप जो है बतौर सजा के कह रहे हैं कि आप दवाई पिलाएं, ठीक है ना? एक तो ये कि इसका दीन के साथ ताल्लुक नहीं था, इसका कोई ताल्लुक शरीयत के साथ नहीं था, शरीयत तो पूरी हो चुकी थी उस वक्त तक। अलयौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदितु लकुम अलइस्लाम दीना, ये तो हो चुका था उस वक्त, है ना, दीन तो मुकम्मल हो चुका था। लेकिन इससे नबी अल्लाह ताला हमें इशारे दे रहे थे, ये देखो अब ये जो उम्र होती है ना, ये उम्र फिर ऐसी हो जाती है, अब इसके अंदर तुमने अदब का दामन हाथ से छोड़ना नहीं है, राइट, हत्ता के प्यार और मोहब्बत का भी दामन तुमने हाथ से छोड़ना नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों के साथ तुमने करना है ठीक है, अच्छा ही बर्ताव करना है। इसी वजह से अकाबरीन नबी अलैहिस्सलाम की उम्र तो उस वक्त मुकम्मल हो गई, खत्म, अल्लाह ताला ने वापस बुला लिया, लेकिन दूसरे अकाबरीन लंबी लंबी उम्र तक रहते हैं, 80 साल कोई रहता है, कोई 90 साल रहता है, कोई 100 साल रहता है। ठीक है, अब उस दौर में कभी कभी ऐसे जो बुजुर्ग होते हैं ना, वो कोई ऐसी बात कह जाते हैं जो कि ठीक नहीं होती, सही बात नहीं होती, यानी शरीयत के मुताबिक भी वो कोई ऐसी बिल्कुल सही बात नहीं होती वो। तो अब क्या करना चाहिए, क्या उनको फौरन से जो है वो, नहीं आप ये गलत काम बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, और जो है वो उनके ऊपर सख्ती करनी शुरू कर दी जाए, या उसकी वजह से उनके साथ बदगुमान होना शुरू हो जाए कि ये देखो इनको क्या हो गया, ये तो उल्टी बातें कर रहे हैं, हालांकि शरीयत में तो ऐसा नहीं है, हालांकि हमारा दीन तो ऐसे नहीं कहता। नहीं, उस वक्त क्या करना है, उनके साथ फिर भी हुस्न सुलूक करना है, उनके साथ फिर भी प्यार मोहब्बत करनी है, चाहे वो कोई गलत बात कर रहे हो, और उस वक्त की उनकी गलत बात को इग्नोर करना है। जो उन्होंने बातें अपनी जवानी में करी थी, अपनी प्राइम एज में करी थी, उनके ऊपर तवज्जो रखनी है, उनके ऊपर तवज्जो रखनी है, उन्होंने अपनी प्राइम एज में क्या बातें करी थी, क्या हमें बातें सिखलाई थी, उनके ऊपर फोकस रखना। ठीक है जी, अगर ये बात समझ में आ गई, बहुत बड़े बड़े मसले हल हो जाएंगे, खुसूसन आज के जमाने के, ठीक है ना, बहुत बड़े बड़े मसले हल हो जाएंगे अगर ये बात आपको समझ में आ गई। रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने करवा दी होगी, तो वो फिर अगर किसी को इल्म की जुस्तजू हो, बात को समझने का शौक हो, वो रिकॉर्डिंग से समझने की कोशिश कर ले। हम यहाँ पे अपनी क्लास खत्म कर रहे हैं। आपको दावाना अलहमदुल्ला रबिल आलमीन, सलाम वालेकुम।